धवला पुस्तक दसवीं लेक्चर नंबर 15। ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम शुद्धात्मने नमः नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वच्छायाणं नमो लोए सौवसाहूणं कम्मठजनियवेयण वहि समुत्तिन्नये जिने नमिहुं वेयण महाहियारं विविहियारं परुवेमो। आचार्य श्री जयसेन आचार्य श्री वीरसेन स्वामी रचित यह धवला नामक टीका है जो षटखंडागम ग्रंथ पर लिखी हुई है, जिसके कर्ता है पुष्पदंत और भूतबली आचार्य। इसमें चौथा वेदना खंड है और इसमें यह वेदना अनुयोग द्वार चल रहा है। दसवीं पुस्तक के पृष्ठ संख्या 85 पर हम आ गए, 85। कल से थोड़ा हल्का हो गया ना, हाँ, समझने लगा। यहाँ नीचे का पैराग्राफ वहां से अभी पढ़ना है, हाँ। थोड़ी ऊपर की बात पढ़ेंगे तो फिर कल का रिवाइज होकर फिर हम आगे बढ़ेंगे। अब कई हमने पढ़ा है, फिर पढ़ते हैं। पहली लाइन से पढ़ेंगे। इस प्रकार जाकर द्वितीय दुगुणी वृद्धि के प्रथम निषेक यानी दूसरी गुणहानि का पहला निषेक, जघन्य योगस्थान 16 वाला था, ये 32 होगा। अभी क्या हुआ, ये दो गुना हुआ तो भागाकार आधा हो जाएगा। हमने 16 का वो कितना भागार देखा था, 711/8। अभी उसको दो गुना करना है, नहीं उसको आधा करना है, उसको आधा करना है, यानी 8 को डबल करेंगे 16, तो 711/16 यानी गुणहानि का गुणहानि प्रति पहला निषेक ऐसा हो जाएगा, आधा फिर चौथा भाग फिर इस तरह से। तो प्रथम निषेक के प्रमाण से सब द्रव्य के अपहृत करने पर वह जघन्य योगस्थानवर्ती जीवों के भागार, जघन्य योगस्थानवर्ती जीवों का भागार, वो जीव 16 थे और उसका भागार का अर्थ है जिस संख्या से 1422 को भाग देने पर हमें 16 आती है, वो भागहार था 711/8। अब उसके द्वितीय भाग से अपहृत होता है, उसका दूसरा भाग यानी 16। समझ में आई बात, हाँ। क्योंकि जघन्य योग स्थानवर्ती जीवों की अपेक्षा इस स्थान के जीव दुगुणे पाए जाते हैं। ये तो समझ में आसान है ना, लब्ध राशि जितनी है वो दुगुनी हो गई तो भागार आधा हो जाता है। इसकी संदृष्टि 711/16। अब उसके अनंतर योगस्थानवर्ती जीवों के प्रमाण से सब द्रव्य के अपहृत करने पर असंख्यात गुणहानि स्थानांतर काल से अपहृत होता है, यानी उसको एक्चुअल यथार्थ में उसका प्रमाण कितना है, असंख्यात गुणहानि हमसे उसको भाग देते हैं। अब यहाँ तो बहुत थोड़ी गुणहानियां ली हमने, कितनी तो वो 11 पूर्णांक कुछ थी, वो 711/8 का अर्थ होता है वो 11 पूर्णांक कुछ हम नहीं देखेंगे। अब उसके आगे आगे बढ़ेंगे, फिर भी वो असंख्यात गुणहानियां ही उसका प्रमाण असंख्यात गुणहानि। विशेष इतना है कि इससे अनंतर पूर्व के अवहार काल से इस समय का अवहार काल विशेषहीन है। अनंतर यानी जो हमने 32 वाला स्थान देखा उसके अनंतर वाला स्थान कौन सा है, यहाँ का प्रक्षेप 8 है, नेक्स्ट स्थान 40 है, तो उसकी बात है। तो 32 से यहाँ हमें लब्ध राशि थोड़ी बढ़ी, कितनी बढ़ी, एक प्रक्षेप प्रमाण बढ़ी है, तो भागहार क्या होगा, थोड़ा हीन होगा। वहाँ लब्ध राशि थोड़ी ज्यादा है तो भागार थोड़ा हीन। तो हानि का प्रमाण हम निकालते हैं कि कितने स्थान जाने पर एक की हानि होती है, तो हमारे जितना विरलन है उसने स्थान जाने पर क्या होगा, इस तरह से हम हानि का प्रमाण निकाल सकते हैं। तो विशेष इतना है कि इससे अनंतर पूर्व के अवहार काल से इस समय का अवहार काल विशेष ही है, यानी 32 का जो अवहार काल है 711/16 उससे ये दूसरा जो निषेक है वहाँ का, उस गुनहानी का दूसरा निषेक है वहाँ के योग स्थान में जीवों की संख्या, वो अवहार काल विशेष ही है। विशेष का प्रमाण क्या है तो यथार्थ में कितना है, तो पल्योपम का असंख्यात्व भाग है विशेष का प्रमाण, जिसको हम कहेंगे वो जो भागार जितना कम करना है उसकी बात है। एक्चुअल भागार कितना है, असंख्यात गुणहानियां, और विशेष जो उसमें से कम करना है वो पल्ले का असंख्यात्व भाग, उसकी संदृष्टि 711/20 है। ये 711/20 हम निकाल के देख सकते हैं, हमें अभी पता चला है कैसे निकालना है। देखो हम क्या करते हैं, पहले उपरिम विरलन, उपरिम विरलन हम कितना करते हैं, वो जघन्य योग स्थान लेना था तो 88 यानी 711/8 लिया था, हम डायरेक्ट 32 का लेते हैं ना, 32 का अवहार काल जितना है उसका 711/16 वैसा करेंगे हम, तो 711/16 बार हमने लिखा तो उसके ऊपर क्या देना है, 32 उसको ना, यहाँ 32 हर एक के ऊपर 32 आएगा, क्योंकि जो अवहार काल में टोटल द्रव्य डिवाइड करके देना है उसका अर्थ ही हर एक के ऊपर 32 आएंगे, तो हमें हर एक के ऊपर 32 आए। अब दूसरा विरलन करना, वो कितना करना है, 4 करना, हाँ, और 32 एक 32 इसमें डिवाइड करके दे दो तो 8-8 होने दे, यहाँ का प्रक्षेप का प्रमाण होता, समझ में आती नहीं ये बात। दूसरा जो नीचे विरलन करना है वो गुणहानी प्रमाण विरलन किया, और उसमें एक के ऊपर जो 32 आया था ऊपर के विरलन में, वो ये 32 जैसे ना हमने रुपए का खुला कर दिया वैसे ये 32 को खोलकर हमने 8-8 में बांट दिया। अब यहाँ का एक 8 लो, यहाँ मिलाओ, ये 8 ले लो दूसरे में मिलाओ, ये 8 ले लो तीसरे में मिलाओ, ये 8 ले लो चौथे में मिलाओ, यानी जब एक खुला किया तो आगे के 4 में मिल गया, यानी टोटल स्थान कितने हुए, 5, 5 स्थान जाकर एक की हानि हुई, तो हमारे पास स्थान कितने हैं, 711/16। अभी आसान हो ना, फटाफट बोलने लगे, 5 स्थान जाने पर, एक कल हमने बहुत किया है मेहनत, अच्छा है आपने आए हैं, तो 711/16 में कितना, ये कितना होगा नीचे, ये 5 नीचे चला जाएगा तो 711/80 हो जाएगी, बराबर। ये तो हानि का प्रमाण है, अब ओरिजिनल 711/16 में से उसके हानि कम करना है, यानी 1/5 कम करना है, कितना रह जाएगा, 4/5 रह जाएगा। देखो अभी हम ऐसा लिखेंगे, 711/16 माइनस 711/16 × 5, ये ऐसा नहीं ना, अभी यहाँ छेद समान करना है तो यहाँ पर भी 5-5 से ऊपर नीचे गुणा करो, तो 5 बार 711 में से एक बार 711 गए तो 4 बार 711 रह गए, वो हानि को कम किया ना हमने, तो 4 बार 711 रहे और नीचे 16 × 5 रहेंगे तो 4 × 16 = 20, तो यहाँ का स्थान कैसे आ जाएगा, 711/20। अब आगे 8-8 का प्रक्षेप बढ़ेगा ना, तो अभी उसके अनंतर स्थान निकालना है, वही 32 वाला ही रखेंगे हम, एक एक स्थान पर 32 थे ऊपर का विरलन, नीचे एक 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 किया उसके ऊपर 8-8 दिए, अब यहाँ एक एक में 2-2 प्रक्षेप देना है, या ऐसा कर सकते हैं आधी गुणहानि प्रमाण ही विरलन करो और उसके ऊपर 16-16 दे दो, क्योंकि हमको इतना ही है ना, हाँ, तो यहाँ हमने ऊपर का एक 32 खुला कर दिया, 2 में बांट दिया, एक चला गया, और एक 16 और 16, आगे के दो स्थानों में हमने वो 16 और 16 मिला दे, मैंने तीन स्थानों में से एक 32 निकाला, आगे के दो स्थानों में दिया एक निगाह, तो तीन स्थान जाकर एक की हानि हो रही है। जैसे पहले हमने देखा था जघन्य स्थान में, तो तीन स्थान जाकर एक की हानि होती है, तो इतने 711 बटे अभी हमारा 16 है, उतने स्थान जाने पर कितना होगा, तो उसका 1/3 आएगा, 48 यानी 711/48, वो 711/16 में से 711/48 माइनस करना है, तो 16 को 3 गुना करना छेद को, अंश को भी 3 गुना करना, तो 3 बार 711 माइनस 1 बार 711, 2 बार 711 ऊपर आ गए और नीचे 16 × 48 है, उसका 24 रह गया, यानी 711/24 आ गए। यहाँ तक समझ में आई बात? ब्रह्मा फिर से स्लोली जाएंगे, देखो एक 32 को हमने खोल दिया और दो में बांट दिया 16 16, ये दो प्रक्षेप आए, तो 32 में दो प्रक्षेप मिलाए तो तीसरे निषेक का प्रमाण आ गया, तो हमने वो दो में डाला, यानी टोटल स्थान तीन गए, एक खोला और आगे के दो पर डाला, तीन स्थान जाने पर एक की हानि होती है, तो हमारे स्थान कितने 711/16 थे, उतने जाने पर कितनी हानि, तो 711/16 × 3 इतने हानि हो गई, वो ओरिजिनल में से कम करना है।
इसके आगे का हमने किया ना,
हाँ
20 वाला नीचे 20 था, 711
हाँ,
तो उसमें हम लोग ने 4 लिया, बराबर
5 में से एक कम हुआ,
तो उसमें भी ऐसे 16 16 नहीं कर सकते, वो उसमें हम लोग ने 4-5 स्थान पे एक की हानि थी।
हाँ, परंतु वहाँ क्या करना था हमको, 8-8 ही मिलाने थे,
उधर भी 16 16 मिला सकते,
कैसे मिलाएंगे, एक ही प्रक्षेप मिलाना था ना, दूसरे निषेक में एक ही प्रक्षेप जाता है, तीसरे निषेक में दूसरे में, यानी पहला निषेक 32 वाला है, दूसरे में एक प्रक्षेप
40
ज्यादा हुआ, तीसरे में दो प्रक्षेप ज्यादा हुए, इस तरह से। हाँ, अभी यहाँ हमको तीन प्रक्षेप मिलाने हैं, तो वहां पर भी हम 4 में ही डिवाइड करेंगे, तीन प्रक्षेप में अर्थात 24 मिलाने हैं, सॉरी 12 नीचे मिलाए थे ना,
नहीं 24 मिलाना,
24 मिलाना पड़ेगा, देखो 8 8 8 8, अभी आगे के निषेक की बात करते हैं, तो वहां ये ऊपर के 32, अभी एक 32 खोल दिया तो 4 में बांट दिया, अभी यहाँ 4 में बांट दिया तो उसमें से ये 3 ले सकते हैं एट ए टाइम, वो एक में डालना है, आगे के एक में 3 डाले, क्योंकि 12 12 है ना, फिर इसमें से एक बचा, फिर वहां से लिया, यानी अब क्या करना है हमको, एक एक में 12 12 डालने हैं, और हमें चौबीस चौबीस डालने हैं, तो 32 में से 24 गए तो रहे कितने, 8, तो हमें इस तरह से देना है, तो कितने में से निकाले तो कितने में चले जाएंगे, तो 12 12 हमको निकालने हैं, तो 12 12 कितने बार निकालेंगे, 1 32 में 2 32 3 32 3 32 में हमने निकाले, तो 3 32 में से हमने 3 3 बार निकाले, यानी 3 32 की टोटल संख्या कितनी होती है,
96
वो 96 को 8 8 कितने में चले जाएगा,
12 86 96
एक मिनट, एक्चुअली 4 का 3 में जाएगा, ऐसा कुछ था ना, का 3 का 4 में जाएगा, हमने 8 में कैसे किया था, 3 बार 16 निकाले,
तो
नहीं नहीं 3 बार 16 है, 16 × 48 तो 12 × 48 इस तरह से चला गया था, यहाँ ऐसा ही होगा, 24 निकालने, 24 मैंने वो बीच में 8 8 और 8 38 24 निकालना है, 24 24 निकालना है, तो 32 हमने 3 बार निकाले तो 96 आ गए, अभी वो 24 कितने बार हो जाएगा उसमें? चार बार, 24 × 96। जब हम तीन खुला करते हैं तो आगे के चार स्थानों में दे सकते हैं, यानी टोटल स्थान सात गए, तो सात जाने पर तीन की हानि हुई, तो 711/16 जाने पर कितनी हानि हो जाएगी? तो 3/7 इसमें आना। कल ही हमने किया था 16 के पहले गुणहानि में ऐसा ही किया था, सात स्थान जाने पर तीन की हानि होती है, तो उतने जाने पर कितनी होती है, यही करना है यहाँ पर भी। तो उसका प्रमाण क्या आ जाएगा?
711/24।
नहीं नहीं, देखो, सात स्थान जाने पर, पहले हमने क्या देखा था? पांच स्थान जाने पर एक की हानि, फिर क्या देखा? तीन स्थान जाने पर एक ही हानि, अभी हाँ सात जाने पर तीन की हानि होती है, तो 711/16 जाने पर कितनी होगी? तो यहाँ इंटू तीन सप्तमांश आते हैं, यह हानि का प्रमाण है। वो ओरिजिनल इसमें से मिलाना, माइनस करना है, 711/16 माइनस 711/16 इंटू तीन सप्तमांश। अब यहाँ का छेद है 16 × 7, यहाँ पर भी सात सात से गुणा करो ऊपर नीचे, तो 7 711 में से 3 711 गए, तो 4 711 रहे ऊपर और नीचे 16 × 7, 4 × 16 तो 28 नीचे आ जाते हैं। यानी अंश में हमने क्या कहा, पहले 16 था, फिर 20 हो गया, फिर 24 हुआ और फिर 28 हो गया। यहां तक समझ में? ये तो कल का विषय था। ऊपर 4 × 711 था, नीचे 16 × 7 आया था, 4 × 16 गया, 7 × 28। देखो देखो, हमें क्या करना है, हमारा ऊपर का विरलन कितना है? 711/16, उसकी जो वैल्यू होती है इतने बार एक एक लिखे, हर एक के ऊपर 32 32 दिए, हमें एक एक 32 खोलकर उसमें से 24 24 डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो हमने 3 32 खोले तो 96 मिले, तो उसमें 24 कितने में दे सकते हैं? 4 में दे सकते हैं, तो टोटल स्थान कितने हुए? 3 तो खोल लिए और 4 में डिस्ट्रीब्यूट किए, यानी 7 टोटल स्थान गए। तीन तो हमने खोल दिए, इसको हमने छुट्टा कर दिया, उसका 3 को छुट्टा कर दिया और आगे के 4 में हमने 24 24 डाले। ख्याल में आई ना बात? इस तरह से उसको मिल जाता है। अब तृतीय गुणहानि का प्रथम निषेक। अब देखो ऐसा करना, नीचे जघन्य स्थान था 16 वाला, उससे 2 गुणा वाला था 32 का, और 4 गुणा हो जाएगा 64 वाला, यानी अभी हमें लब्ध राशि 4 गुणा चाहिए, तो भागहार चौथे भाग प्रमाण हो जाएगा। तो 16 वाला जघन्य स्थान था, 711/8 था, अब यहाँ भागहार 32 हो जाएगा, यानी जो हमने 32 वाले निषेक का जो भागहार देखा था 711/16 उससे आधा हो जाएगा। तो वहां 711/16 देखा था, ये 711/32 हो जाएगा। ये तृतीय गुणहानि के पहले निषेक का भागहार, यहाँ तक समझे? अब यहाँ पढ़ेंगे नीचे का पैराग्राफ 85 पेज, तृतीय गुणहानि के प्रथम निषेक का भागहार, प्रथम गुणहानि संबंधी प्रथम निषेक के भागहार के जो 711/8 था उसके चतुर्थ भाग प्रमाण है। आपको वहां वैल्यू डालनी है तो डालिए, 711/8 के चतुर्थ भाग प्रमाण है, यानी उसके 8 को 4 गुणा करना है, 711/32 नहीं, वो प्रथम निषेक भागहार की वैल्यू है 711/8 और उसका चतुर्थ भाग प्रमाण है 711/32। समझ में आई बात? क्योंकि वहां के लब्ध से, वहां का लब्ध कितना था? 16 था, वहां भागहार का भाग देने पर जघन्य स्थान की संख्या 16 आई थी, तो वहां के लब्ध से यानी 16 से यहाँ का लब्ध यानी 64, उसके ऊपर माथे पर वैल्यू डालो तो आपको समझ में आसान होगी, यानी तृतीय गुणहानि का प्रथम निषेक। यहाँ का लब्ध का अर्थ क्या है? तृतीय गुणहानि का पहला निषेक, 4 गुणा पाया जाता है, वहां 16 थी संख्या, यहाँ 64 है। इस प्रकार असंख्यात गुनहानियां भागहार होकर जाती हुई। देखो सब जगह में असंख्यात गुनहानियों का ही भाग चल रहा है, यथार्थ में वो कितने असंख्यात है नीचे गुनहानियां, बीच में कितने तीन गुनहानियों कुछ कम से भाग दिया था 128 के लिए, और एकदम जघन्य स्थान जो हमारा तीन ही गुनहानियां थी इसलिए थोड़े थोड़े संख्या में हमें बता दिया, तीन ही गुनहानियां थी वहां तो असंख्यात गुनहानियां है, तो भागहार भी असंख्यात गुनहानियां था उसका। अब आगे बढ़कर क्या होगा, प्रति गुनहानी के पहले निषेक में भागहार आधा 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 होता चला जाएगा, यानी असंख्यात गुनहानियों के आधे प्रमाण, फिर उसके आधे प्रमाण, उसके आधे प्रमाण, इतनी गुनहानियां होगी। अब ये कहते हैं किस स्थान में जघन्य परिता संख्यात मात्र होती है, यानी गुनहानियों का प्रमाण जघन्य परिता संख्यात, समझ में आई, असंख्यात गुनहानियां असंख्यात गुनहानियां थी, अब यहां परिता जघन्य परिता संख्यात मात्र के बाद गुनहानिया शब्द डालो बीच में, जघन्य केवल भागहार जघन्य परिता संख्यात नहीं है, हाँ क्योंकि एक गुनहानी श्रेणी के असंख्यात विभाग प्रमाण है, तो देखो असंख्यात परिता संख्यात मात्र के बाद गुनहानिया शब्द डालो, उसमें है क्या नहीं, देखो अब मैं प्राकृत में बग नीचे से तीसरी लाइन देखो क्या कहते हैं, असंख्यात गुनहानियां थी ना भागार, अब कहां जाके असंख्यात में से मिनिमम असंख्यात का नाम क्या है, जघन्य परिता संख्यात, उसके अभी उसके नेक्स्ट वाले गुनहाने में क्या होगा, उससे आधा यानी कोई संख्यात का प्रमाण आएगा वहां से शुरू हो जाएगा, ख्याल में आती है ना, तो यहाँ कहते मिनिमम असंख्यात वाली जो संख्या थी वो कब होगी, कितने स्थान जघन्य स्थान से कितने गुनहाने जाकर वो होने वाली है, ये उनका प्रश्न है, समझ में आई बात, यानी जो गुनहानिया कितनी होगी तो जघन्य परिता संख्यात प्रमाण गुनहानिया, उसके ऊपर प्रति गुनहानी वो आधा 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 होता चला जाएगा भागहार प्रति गुण प्रत्येक गुनहानी के पहले निषेक में, ये समझ में आती है बात, तो ये प्रश्न पूछा कि असंख्यात गुनहानिया असंख्यात गुनहानिया भागहार था, कितने स्थान आगे जाने पर वो जघन्य परिता संख्यात प्रमाण गुनहानिया होगी, ये उनका प्रश्न है,
ये भागहार का प्रमाण करता है,
हाँ टोटल भागहार, जैसे यव मध्य में कितना है, कुछ कम छोड़ दो तीन गुनहानिया है, उसके नीचे ऐसे उल्टा हो तो 6 गुनहानिया 12 गुनहानिया 24 गुनहानिया 48 गुनहानिया होगी, ऐसे बढ़ते बढ़ते संख्या कितनी संख्या बढ़ो फिर असंख्यात गुनहानिया, वो जघन्य परिता संख्यात वाली जो गुनहानियों का प्रमाण है वो किस स्थान पर आएगा, ये प्रश्न है, इतनी समझ में आई बात, ऐसा पूछने पर उत्तर देते हैं, ये वो मध्य से अधस्तन कुछ कम तिगुणी अन्योन्य अभ्यस्य राशि के जितने अर्ध छेद है, जितने अर्ध छेद कितनी बार अन्योन्य अभ्यस्य राशि कितनी आती है, तो नाना गुनहानी प्रमाण दो लिखकर आपस में आती है, तो जैसे हम कहेंगे ना कितने बार वो नीचे कितने बार वो डबल डबल हो जाएगा, तो नीचे से अगर काउंट करें तो कितने जाकर दो गुना हो रहा है, तो जितने अभी नीचे से कितने स्थान जाने पर बताना है, तो कहते अधस्तन कुछ कम तिगुणी अन्योन्य अभ्यस्य राशि के जितने अर्धच्छेद जघन्य परिता संख्यात के अर्धच्छेदों से अधिक हो उतनी मात्र गुनहानियों के बढ़ताती हूँ, हाँ ऊपर देखो जहन परिता संकज छेदन ही अहियाणी और वहां स्टार किया है मुद्रित प्रतो ऊणानी इति पाठ है, फिर पूरा पढ़ते मैं अधिक करके पढ़ती हूँ, यहाँ जो लिखा है उसको पढ़ेंगे, नीचे से दूसरी लाइन, ये प्रश्न क्या पूछा था कि जघन्य योग स्थान में भागहार कितना था, असंख्यात असंख्यात गुनहानिया, उसके आगे के दूसरे गुनहाने में गए तो भागहार आधा हुआ आधा हुआ आधा हुआ, तो तो आधा होते 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 वो असंख्यात का प्रमाण, जितनी असंख्यात गुणहानियाँ हैं तो ये असंख्यात गुणहानियाँ, तो ये कहाँ पर जाकर जघन्य परिता संख्यात प्रमाण गुणहानियाँ होगी कि असंख्यात की भी वैल्यू बहुत बड़ी थी, वो घटते 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 इतनी हो गई, ये प्रश्न है। तो ये कह रहे हैं ये वो मध्य से अधस्तन कुछ कम तिगुण अन्यन्य व्यस्त राशि के जितने अर्धच्छेद जघन्य परिता संख्यात के अर्धच्छेदों से अधिक हो उतनी मात्र गुणहानियों के चढ़ने पर
या भागाकार बढ़ता जाता है तो गुणहानियां कम होती जाएगी कि बढ़ती जाएगी? भागाकार कम होता जाता है।
कम कहाँ हो रहा है भागाकार?
नीचे से ऊपर।
अच्छा, भागाकार
कम होता जा रहा है।
आधा आधा।
तो ये हीन होना चाहिए।
क्या हीन होना चाहिए?
से हीन हो इतनी मात्रा गुणानियों
नीचे से उतने ऊपर चढ़ना है। एक मिनट, यहाँ का ये वो मध्य में कुछ कम को छोड़ दो, तीन गुणहानियां थी, उसके नीचे छह गुणहानियां होंगी, उसके नीचे 12 गुणहानियां होंगी, उसके नीचे 24 गुणहानियां होंगी, उसके नीचे 48 गुणहानियां। मान अभी 48 के आगे का भी सोचो ना, 48 दुना 96।
ये ऊपर से हम लोग गिन रहे हैं ना?
अभी ठहरो, मुझे सोचने दो। अभी यहाँ कितने स्थान जाकर ये गुणहानियों का प्रमाण
परिता
में 12 हो जाएगा,
कुछ परिता संख्या प्रमाण हो जाएगा ना, इससे पता है।
कुछ भी समझो ना, अभी जगन परिसा के को भूल जाओ। कितने स्थान जाकर 12 होगा ये पूछ रहे हैं। तो यहाँ क्या कहते हैं, अभी 12 का अर्धच्छेद निकलता है क्या? जिसका अर्धच्छेद निकलने में आसान है उसको कहेंगे ना
16 का लेते
हैं। 16 आएगा ना, 3, 6, 12 24 12 3 चौक 12 ऐसे 12 2 × 2 = 4 यानी 3 2 × 2 × 2 और रह गया कितना, 2 × 4 × 8
16
हो जाएगा। कुछ कम कुछ कम मान लेते ना, इतना है समझने के लिए। यार दूसरी संख्या ले लो ना, हमें जो जिसके अर्धच्छेद आ सकते उसकी संख्या ले लेंगे। 2 से शुरुआत करो ना, हमें कहाँ बसंत दृष्टि उनके साथ नहीं कुछ नहीं ना। यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ 8 होता है, यहाँ
16
होता है, यहाँ 32 हो जाता है और यहाँ 64 होता है, इसने 22 हो गए। तो कितने स्थान जाकर ये वाली, यहाँ कितनी है हमारी गुणहानियां, 8 गुणहानियां है। 8 गुणहानियां कहाँ पर आएगी ये हमारा प्रश्न है। नीचे से जाकर कितने हैं?
तो भागाकार बढ़ता जाएगा।
8 संख्या आनी चाहिए, तो 8 संख्या जो है वो 8 के बदले हम जघन्य परिता संख्या समझेंगे। तो कितनी ऊपर जाकर वो संख्या आएगी? तो कहते यहाँ इसके अर्धच्छेद कितने, 8 के अर्धच्छेद 3 है, क्योंकि 3 × 2 से गुणा करने पर 8 संख्या आती है, बराबर। अब 64 के अर्धच्छेद कितने हैं? 8 के अर्धच्छेद 3 हुए, 16 के अर्धच्छेद 4 हो जाते हैं,
5, 6 हो जाएगा,
ये 4 हो गए। 32 के अर्धच्छेद 5 और इसके 6, तो कितने स्थान हम नीचे से ऊपर चढ़े हैं ये कहना चाहते हैं। यहाँ के अर्धच्छेद है 6 और यहाँ का अर्धच्छेद है 3, 6 में से 3 माइनस किए 3 आए, तो ऊपर 3 स्थान चढ़कर ये स्थान आ गया।
तो हीन होने से ऐसा मेरा
क्या कहा, अधस्तन कुछ कम तिगुणी अन्योन्य व्यस्त राशि के जितने अर्धच्छेद, नीचे के पूरे लिए देखो, नीचे के अन्योन्य व्यस्त राशि कितनी आई है यहाँ पर, नीचे के अन्योन्य व्यस्त राशि कितनी है, गुणहानियां कितनी हुई, 1, 2, 3, 4, 5 गुणहानी हुई, तो उसके अन्योन्य व्यस्त राशि कितनी हुई,
5 की हो गई, 32
हाँ 32 हो गई, क्योंकि हाँ ये 32 हो गए उसकी अन्य अन्य व्यस्त राशि। तो तिगुणी अन्य व्यस्त राशि के जितने अर्धच्छेद जगन्य परिता संख्यात के अर्धच्छेदों से अधिक हो,
अन्य राशि अधिक हो रही है
32 है
हाँ।
और उसमें ये इसके इसके कितने अर्धच्छेद 3 है, 8 के अर्धच्छेद 3 है, नहीं नहीं उसके अर्ध एक मिनट, पूरी अन्य व्यस्त राशि 32 थी,
नहीं पूरी सबकी मिलके
हाँ, यव मध्य से अधस्तन,
यव मध्य से नीचे की ओर जा रहे हैं
हाँ, तो कितनी गुणहानियां हुई यहाँ का, 1, 2, 3, 4, 5 गुणहानियां हुई, तो 5 गुणहानियों की अन्य व्यस्त राशि कितनी हो जाएगी,
अरे 6 हो जाएगी ना,
32 हो जाएगी
हाँ,
5 बार 2 बार 2 लिख कर आपस में गुणा करो
32 हो जाएगी।
तो जघन्य परिता संख्या के अर्धच्छेदों से अधिक हो उतनी मात्र गुणहानियों के चढ़ने पर, यहाँ कम या अधिक उसमें वो अन्य व्यस्त राशि क्यों कहते वहां पर, और तिगुणो क्यों कर दिया उसको,
मैंने तो खाली सिंपल कैलकुलेशन लगाए ऊपर गुणा श्रेणी का संख्या, अरे पल्लव के संख्या गुणा
नहीं उसकी बात नहीं मैं करो हाँ,
ये हील होती जाएगी ऐसे मेरा खाली कैलकुलेशन था,
इसलिए उन्होंने तो हील ना उन्होंने ये पाठ है वहाँ पर पूरे पढ़ लेते,
परिता संख्या की अन्य राशि कम हो जाएगी ना,
क्योंकि नीचे तो ये भागहार कम हो जाए, गुणहानियों की संख्या ऊपर ऊपर कम हो रही है, तो 8 ये जो गुणहानि का प्रमाण है 8 गुणहानियां, ये प्रमाण कितने स्थान ऊपर जाके आने वाला है ये कहना चाहते हैं, तो हम ऐसा लिखें वो तिगुणा अन्य बस वो छोड़ दो, कितनी गुणहानि है टोटल, नीचे 5 गुणहानियां है ना, तो 5 गुणहानियां है 1, 2, 3 यानी यहाँ हमने 5 बार ये घटित नहीं हो रहे, देखो ये नीचे से कितने स्थान ऊपर जाना है बस ये बात कर रहे हैं, तो यहाँ का 64 का अर्धच्छेद कितने थे हमने देखे थे
6,
उसमें से इसके अर्धच्छेद माइनस करो 3 हो जाएगा, परंतु उन्होंने ऊपर से टोटल लिए हैं, ऊपर के टोटल जो अन्य व्यस्त राशि थी टोटल,
अच्छा सभी की टोटल में
हाँ, उसमें से वो ऐसा कुछ किया है हाँ।
तो हीन यहाँ पे होना चाहिए कि अधिक होना चाहिए, यही मेरा क्वेश्चन था,
हीन ठीक लगता है ठीक है पर
हीन ही हो जाएगा मेरे ख्याल,
इसलिए दूसरी मुद्री में वो उन्होंने भी हीन लिखा है वहाँ पर, और वो तिगुणा अन्य व्यस्त राशि का अर्थ क्या समझते हैं, ऊपर क्या लिखा है देखो, जव मज्जादो हेट्टिम किंचुन तिगुण अन्योन्न बत्तर आशीष जेतियाणी अद्धच्छेदयाणी, यानी तिगुणी अन्योन्य अभ्यस्त राशि की अन्योन्य अभ्यस्त राशि कितनी थी उनकी, अपने उदाहरण में तो 8 ही थी, और यहाँ का उदाहरण लेंगे तो यहाँ अन्योन्य अभ्यस्त राशि कितनी हो जाएगी, क्योंकि हमने 1, 2, 3, 4, 5 स्थान गए, तो 32 यहाँ के अन्य व्यस्त राशि हो जाएगी, अगर 32 को तिगुण करते हैं, तिगुणी का अर्थ होता है 32 को 3 गुना किया, क्यों किया पता नहीं, 3 × 7 = 9 हो जाएंगे, तो तिगुणी अन्य व्यस्त राशि की जितने अर्धच्छेद अभी उसके 96 के अर्धच्छेद निकालो,
96 के अर्धच्छेद निकालना, पूर्णांक नहीं आएगा, पूर्णांक में आएगा तो
नहीं, नहीं देखो ना, 2 से भाग दिया तो 48 आ गया, फिर 48 को 2 से भाग दिया तो
24
आ गए,
12 आ गए,
फिर 12 आ गए,
6 आ गए,
6 आ गए, तीन एंड तीन आए तो तीन को फिर दो से भाग दिया तो एक रह गया, एक दो तीन चार पांच और कुछ। तो त्रिगुणी अन्योन्य अभ्यस्त राशि के अर्ध छेदों से जितने जघन्य परितास संख्यात अर्ध छेदों से अधिक हो, जघन्य परितास छेद के कितने अधिक है, तो यहाँ आठ के अर्ध छेद तीन है और ये उससे कितने अधिक है, कितने अधिक है, कितने अधिक है, कितने कम है, नहीं कहा
अधिक हो उसकी मात्रा,
क्योंकि उसके इससे वो कितने अधिक है।
अच्छा,
अधिक ही बराबर है क्योंकि जघन्य परितास संख्यात के अर्ध छेद कम है और ये अधस्तन जो गुणहानियों के अभ्यस्त राशि जो है उसको तिगुणा करके वो उससे कितने अधिक है, वो जघन्य परितास संख्यात के अर्ध छेदों से वो कितने अधिक है ये पूछा उन्होंने। तो कितने से अधिक है तो मान लेते ना तीन से अधिक है, उतने स्थान नीचे से ऊपर जाकर, ये उसका अर्थ होता है। वो बराबर है, अधिक बराबर है, नहीं ये नीचे पाठ दूसरा बताएं, नीचे के एक पाठ में उन्होंने उना नहीं लिखा है,
नहीं बात लक्ष्मी की बुक में ना अधिक हो उसके जगह हीन हो,
वही तो मैं कहती हूँ। और वहाँ स्टार लिखा है ऊपर जो कुछ पत्ते जैसा साइन किया है अहियानी के लिए, और मुद्रित प्रतव उनानी इति पाठ, यानी वो दूसरा एक पाठ पाया जाता है, बस इतनी बात है। तो उतनी मात्र गुणियानी नीचे से चढ़ने पर, उनके दो का जो डिफरेंस है उतने नीचे से ऊपर चढ़ने पर, ये उसका अर्थ है। वहां के निषेक भागहार जघन्य परिता संख्यात गुणहानी प्रमाण होता है, जघन्य परिता संख्यात इतनी गुणहानियां वे वहां का भागहार है, ऊपर जब और गुणहानियां चढ़ेंगे तो क्या क्या होगा, उसका आधा उसका आधा उसका आधा, यानी संख्यात में आ जाएंगे, संख्यात में आधे होते 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 वो चलेगा आगे। देखो इससे उपरिम गुणहानी में जघन्य परिता संख्यात की आधी मात्र गुणहानियां भागहार होती है, ये सभी गुणहानियों का पहले निषेक का लेना है, क्योंकि हमने देखा ना 16 का लिया, फिर 32 का लिया, 64 का लिया, इस तरह से। तो इस प्रकार जाकर यव मध्य से नीचे चतुर्थ गुणहानि के प्रथम निषेक का, निषेक नहीं निषेक का भागहार कुछ कम 48 गुणहानि मात्र होता है। थी ना इतने ऊपर चढ़ कर आए ना, वो जघन्य परिता संख्यात गुणहानियां थी, उसके आधे ने कुछ संख्यात आया, संख्यात का आधा संख्यात आया, उसका आधा उसका आधा उसका आधा उसका आधा, ऐसे करते करते यहाँ तीन गुणहानियां कुछ कम थी, वहाँ छह, वहाँ शायद 12 24 48 नहीं समझे, ख्याल में आती है ना बात, आधा आधा करते आए कि नहीं, हम पहले असंख्यात थी, असंख्यात में से संख्यात में आ गए, संख्यात का आधा 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 करते भी 48 तक पहुंचे, ये ऊपर से यहाँ तीन गुण हमने हमारी उसमें इतना नहीं लिया है हमने, परंतु जैसे हमारे वो 711 बटे का वो अलग होता है, इसलिए तीन हमने डायरेक्ट फिगर ली, उन्होंने समझाने के लिए डायरेक्ट तीन फिगर से समझा रहे। तो ये वो मध्य वाला है, उसके नीचे का जो है ऊपर से नीचे की ओर पहली गुणानी है, इस तरह से ऊपर से दूसरी गुणानी, ऊपर से तीसरी गुणानी, ऊपर से चौथी गुणानी का पहला निषेक, उसका निषेक भागहार कितना होगा, यानी उसके उस निषेक के लिए अवहार कितना होगा, 48 गुणानियां, उसके ऊपर चलो 24 गुणानियां, उसके ऊपर चलो 12 गुणानियां, उसके ऊपर 6 गुणानियां, मध्य में आ जाओ 3 गुणानियां। ख्याल में आई बात, अभी यहां पढ़ेंगे। तो हमने ऊपर से नीचे चौथी गुणहानि देखी, उसके प्रथम निषेक का भागहार कुछ कम 48 गुणहानि मात्र होता है। इस प्रकार 48 का आधा 24 हो जाएगा, 24 का आधा 12 हो जाएगा, और 6 गुणहानियां क्रमशः उपरिम गुणहानियों के प्रथम निषेकों का भागहार होता है, ऐसा कहना चाहिए। उपरिम माने हम नीचे से ऊपर ऊपर बढ़ रहे हैं ना, इसलिए उपरिम उपरिम का, हमने अपने उदाहरण में तीन ही गुणानियां ली थी, ख्याल में आती ना बात। तो 711/8 जब हमने कहा था वो 88 पूर्णांक कुछ ऐसा लिया था ना वहां पर, क्योंकि यह तो संदृष्टि बनाई है वो उसी के साथ बराबर मैच नहीं होगी। हाँ, क्योंकि हमने चार ही एक गुणाने में चार ही लिए, वहाँ ज्यादा हो जाते, वो आधा आधा हो जाता है। यह समझ में आई यहाँ तक? इस प्रकार 24, 12 और 6 गुणहानियां क्रमशः उपरिम गुणहानियों के प्रथम निषेकों का भागहार होता है, ऐसा कहना चाहिए। अब यवमध्य के प्रमाण से सब द्रव्य को अपहृत करने पर, यवमध्य ने 128, उससे सब द्रव्य ने 1422 को अपहृत करने पर कुछ कम तीन गुणहानी स्थानांतर काल से वह अपहृत होता है। वो तो पहले ही निकाला था, अब हम नीचे से चढ़ते चढ़ते ऊपर आ गए हैं, इसलिए यव मध्य तक पहुंच गए हैं। उसकी संदृष्टि 1422/128 वो 11.7 64° है, यानी 711/64 हमने पहले ही निकाला था, शुरुआत यहीं से हो गई थी अपनी। अब तदनंतर योगस्थानवर्ती न रह गया, योगस्था हुआ, योगस्थानवर्ती जीवों के प्रमाण से सब द्रव्य के अपहृत करने पर कुछ अधिक यवमध्य के व्यवहार काल से अपहृत होता है। देखो अभी तक क्या करते थे हम, नीचे से हम ऊपर बढ़े तो हम प्रक्षेप डालते थे, यानी लब्ध राशि अधिक अधिक होती थी तो भागहार हीन हीन होता था। अब हमको उल्टा कैलकुलेट करना है,
अभी कम होता है,
अभी क्या होना, लब्ध राशि हीन होती जा, 128 के बाद 112 होने वाली है, तो यहाँ भागहार बढ़ाना पड़ेगा, विशेष अधिक चलेगा। वो कैसे, उसकी वृद्धि, वहाँ हानि का प्रमाण निकालते थे, यहाँ वृद्धि का प्रमाण निकालना है। अब उसको पढ़ेंगे, यथा यव मध्य के भागहार का विरलन कर, ये ऊपर का विपरण विरलन, सब द्रव्य को समान खंड करके देने पर प्रत्येक एक अंक के प्रति यव मध्य का प्रमाण प्राप्त होता है नेचुरली, क्योंकि हमने 128 से भाग दिया तो इतने आए थे, कितने आए थे, 711/64, तो 711/64 जो पूर्णांक में कहेंगे उतने बार एक एक लिखो, बाकी लास्ट में अपूर्णांक आ जाएगा। उसका प्रमाण देखा था ना हमने, 11.7/64, तो 11 एक हो गए और 7.64 लिखेंगे, हर एक के ऊपर क्या आएगा, 128 128। अब ये ऊपर का विरलन हुआ, अब नीचे का विरलन, फिर नीचे दो गुणहानियों का विरलन कर। अब जब वृद्धि करते थे तो क्या था, एक गुणहानि था, अब यहाँ दो गुणहानियों का करना है। पहले भी हमने अवस्थित भागहार वगैरह बात देखी थी, वहां पर भी देखा, नीचे के लिए हमने 4 लिया था और ऊपर के लिए 8 का लिया था। अब नीचे 8 का विरलन करो, यानी 8 बार एक एक लिखो। अब 128 इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दो, 16 16 आ जाएगी,
128 8 में डिवाइड कर रहे
ना, करो ना, 128/8 कितने हुए, 128/16 16, हर एक के ऊपर 16 है, क्योंकि यहाँ का प्रक्षेप ही 16 है ना, ये 16 हमने 8 बार लिखे। यहाँ तक ख्याल में आई बात, ये क्या कहना चाहते हैं उसकी बात है, ऊपर का विरलन है, एक 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 लिखा हमने, उसके ऊपर हर एक के ऊपर 128 लिए, अब एक उसका एक 128 निकालकर हमने 8 में डिस्ट्रीब्यूट किया दो गुणहानियों में, तो हर एक के माथे पर 16 16 आ गए। यहाँ का प्रक्षेप भी 16 है, अभी यह प्रक्षेप हम हीन करते जाने वाले हैं। प्रक्षेप हीन करना है ना क्या, अभी अभी इसको डिस्ट्रीब्यूट करने की जरूरत नहीं है, वो इसमें से हम निकालेंगे एक्चुअली। तो देखो फिर नीचे दो गुणहानियों का विरलन कर, मिला कहाँ पढ़ रही हूँ, नीचे से तीसरी लाइन, यानी आठ का विरलन कर यव मध्य को समान खंड करके देने पर अधस्तन विरलन के प्रत्येक अंक के प्रति यव मध्य के प्रक्षेप का प्रमाण प्राप्त होता है। जैसे हमने लास्ट टाइम यानी पहले 16 से ऊपर चढ़ते समय देखा वैसा ही करना है। यहाँ नीचे का विरलन 8 है, वहां नीचे का विरलन 4 था। पुनः इस प्रक्षेप को ऊपरी विरलन के अंकों पर रखे हुए सब यव मध्यों में से कम करने पर द्वितीय निषेक का प्रमाण होता है। अभी क्या कहना चाहते हैं? अभी यहाँ उसमें से कम करना, अभी 100 इन सब में से 16 कितने बार हुए? 8 बार। तो ऊपर के 8 बार जो 128 थे उन 8 बार में 16 माइनस कर दो, यानी 8 बार 16 निकले उसमें से, तो उसमें एक नया निषेक तैयार हुआ। समझ में आती बात? 8 बार हमने 16 निकाले तो 128 हो गए, तो हाँ तो एक पूरा एक्स्ट्रा बढ़ गया उसमें, एक्स्ट्रा बढ़ गया। हम वहाँ हानि की बात करते थे, यहाँ बढ़ने की बात है। तो वहाँ एक निषेक बढ़ गया, हाँ एक निषेक। देखो क्या कहते हैं, इस प्रक्षेप को ऊपरी विरलन के अंकों पर रखे हुए सब यव मध्यों में से कम करने पर द्वितीय निषेक का प्रमाण होता है। ये समझ में आई ना? क्योंकि 8 बार वो कम करना, 8 निषेकों में से, वह ऊपर के 8 बार 128 थे, एक 128 में से 16 निकाले, दूसरे 128 में से 16, ऐसे हमारे पास तो 8 निकले, तो और एक ऊपर जो 128 यानी वो एक बढ़ गया वहाँ, वहाँ जितना हमारे 11 पूर्णांक जो कुछ था उसमें एक के एडिशन हो गए, ये उसका अर्थ होता है। तो 11 पूर्णांक 7/64 था ना, तो उसमें से 8 में एक की वृद्धि हुई, तो इतने में कितने की वृद्धि होगी, इस तरह से हमको निकालना है। तो अभी देखो, अब उपरिम विरलन मात्र प्रक्षेपों को प्रकृत निषेक के प्रमाण से करते हैं। एक कम अधस्तन विरलन मात्र प्रक्षेपों के समुदित होने पर, सॉरी 128 नहीं, एक कम, क्योंकि हमको कम करना है ना, सॉरी कम करना है तो 7 बार 16 7 12 दर्शे, हमारा निषेक 112 का है, 128 का हिसाब नहीं करना है, 112 का करना है, क्योंकि 128 में 16 माइनस करते तो 112 रहते हैं और हमको निषेक 112 प्रमाण करने हैं। तो 7 बार 16 निकले तो हमको एक निषेक मिलेगा, 8 बार नहीं, तो 7 बार में एक की वृद्धि हो जाएगी। 7 निषेकों में से 16 निकाले, देखो फिर से मैं 128 का हिसाब लगा रही थी, वो नहीं लेना है क्योंकि हमको 128 एक कम करना है, 128 में से 16 कम कर दिए तो कितने रहे? 112, हमको 112 का ही निषेक बनाना है। बराबर है, पहले विरलन में 128 था, एक हर 128 में से हम 16 निकाल रहे, तो 7 बार डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, 7 में से निकाल कर एक नया मिल, हाँ तो 7 निषेकों में से 16 निकाले तो एक 112 एक्स्ट्रा हो गया। अभी उसमें हमको बढ़ाना है, पहले कम करना था, अभी वृद्धि की बात है। देखो पेज नंबर 87 पर आना, एक कम अधस्तन विरलन मात्र, मैंने अधस्तन विरलन 8 का था, उसमें से एक कम कर दिया तो 7 हो गए, तो 7 मात्र प्रक्षेपों के समुदित होने पर यानी इकट्ठा होने पर, यानी 128 हर एक में से हमने 16 निकाले तो 7 बार 16 निकाले तो 16 7 12 उधर से, यदि एक प्रकृत निषेक और एक अवहार काल शलाका प्राप्त होती है। अवहार काल शलाका है ने भागार में एक बढ़ जाता है, यानी एक की वृद्धि होगी ना, तो उपरिम विरलन मात्र प्रक्षेपों में क्या प्राप्त होगा? इस प्रकार देखो मैं कहती देखो उपरिम विरल अधस एक कम उपरिम विरलन मात्र ने 8 - 1 = 7, इतने प्रक्षेपों के समुदित होने पर यदि एक प्रकृत निषेक यानी 112 का और एक अवहार काल शलाका प्राप्त होती है, यानी भागार में एक की वृद्धि हो जाएगी ना, वहां पर जो 11 पूर्णांक जो कुछ थे वहां पर विरलन, उसमें 12 पूर्णांक हो जाएंगे, एक पूरा मिल जाएगा, सात में एक पूरा मिल गया, ये 11 पूर्णांक कुछ थे तो आगे थोड़े ही बाकी रहेगी ना,
सात में एक की वृद्धि हुई,
एक पूरा बढ़ गया, सात में एक पूरा बढ़ गया, अभी सात नहीं आगे, फिर 14 होते तो और एक साथ मिल जाता, इसलिए हाँ अभी इसमें कितनी हो जाएगी, तो ऊपरी विरलन मात्र प्रक्षेपों में क्या प्राप्त होगा। इस प्रकार रूप कम दो गुणहानियों से यानी 8-1=7 से यवमध्य के भागहार को अपवर्तित करने पर कुछ अधिक डेढ़ रूप प्राप्त होते हैं, यानी उसको हमने यवमध्य का भागहार क्या था, देखो पूर्णांकों में देखो 11 पूर्णांक था ना, ये 11 पूर्णांक 7/64 था डिवाइडेड बाय 7, तो 7 और 7 का आधा 3.5 यानी 10.5 हो गए ना, उससे कुछ ज्यादा रहेगा ना, ये कहना चाहते उससे डेढ़ गुना से कुछ अधिक रह जाता। फिर से कुछ अधिक डेढ़ रूप प्राप्त होते हैं, उन्हें उपरिम विरलन में मिलाने पर उसके अनंतर उपरिम निषेक का भागहार होता है, उसकी संदृष्टि 711/56। देखो मैं आपको बताती हूँ, हमें यवमध्य का भागहार मालूम है कितना था, 711/64। अभी हमने क्या देखा, सात स्थान जाकर एक स्थान बढ़ गया, बढ़ गया अभी, क्योंकि सात में से 16-16 निकाले तो एक पूरा स्थान मिल गया, तो 711/64 जाने पर कितना मिलेगा, तो क्या नीचे ये सात चले जाएंगे, 64×7 नीचे चले जाएंगे, ओरिजिनल क्या है 711/64 प्लस करना है, प्लस 711/64, ये समझ में आते है इक्वेशन, ये वृद्धि का प्रमाण है, ये वृद्धि का प्रमाण है, सातवां भाग वृद्धि का प्रमाण है, वो ओरिजिनल में मिला देना, ओरिजिनल कितना था 128 वाला 711/64, उसमें क्या मिलाना 711/64×7, वो हमने त्रैराशिक से निकाला था, अभी उसको समच्छेद करना, तो यहाँ नीचे और ऊपर 7 से गुणा करें, तो ऊपर 7×711 और यहाँ 1×711, तो टोटल कितने हो जाएंगे 7 और 1 8 बार प्लस करना है, तो ऊपर 8×711 और नीचे 64×7, तो 8×64 8×7=56, तो 711/56 आ जाएगी। मेरी ट्रिक बताऊं, 711/64 था, देखो देखो वृद्धि निकालनी, अभी हमको माइनस नहीं करना प्लस करना, लिख लो, अब ये उल्टा लिया मैंने, ये छोटी संख्या में बाद ली लिखी, ये वृद्धि निकाली थी ना हमने, उसमें ओरिजिनल फिगर मिला दी, या इसको पहले लिखेंगे इसको बाद में लिखेंगे, वो वृद्धि का प्रमाण है, इसलिए। अब मेरी ट्रिक सुनो, अब पहले प्रक्षेप में 128 का जो भागहार था, 711 का भागहार 64 था, 8×64, दूसरे में 7×8 करना 56, तीसरे में 7×8=48 हो जाएगा, और चौथे में 5×8=40 हो जाएगा। उसके आगे नहीं जाना क्योंकि 4 ही निषेक है हमारे पास। अब देखो अभी ये 56 आया ना, सात्य आठ ही कर दिया, पहले 88 आठ इंटू आठ था, 64 आठ इंटू आठ था, फिर 7 इंटू आठ किया, क्योंकि हमको 7 में से हमने विरलन किया था 8 का, और उसमें से 7 लिए थे, है ना। अभी आगे 6 प्रक्षेप एक कम हो रहा है, हाँ ख्याल में आती है ना, तो नीचे 8:48 करें, फिर 85:40 हो जाएगा। अभी हम यहाँ से पढ़ेंगे, हाँ चालू करते हैं यहाँ पर, देखो विशेषार्थ यहाँ का पढ़ेंगे, पेज नंबर 87 नया पैराग्राफ विशेषार्थ लिखा है ना वहाँ पर, यव मध्य के भागार 711/64 में एक कम दो गुनहानी, दो गुनहानी 8 की है, उसमें से एक कम कर गया तो 7, 7 का भाग देने पर 711/448 आए, तो मैंने उसको ऐसे ही रखा, 64×7 कर दिया नीचे, क्योंकि वो इतना उसको बढ़ाने की जरूरत नहीं थी, इसलिए समझाने के लिए और हमारा गणित आसान करने के लिए मैंने बता दिया था उसको। ये 448 का ही अर्थ होता है 64×7, पुनः 711/448 को यव मध्य भागहार 711/64 में जोड़ देने पर, क्योंकि वो वृद्धि का प्रमाण आया था ना, इतने 7 वो गुणहानी प्रमाण 8 बार हमने, वो तो 128 को 8 में जो डिस्ट्रीब्यूट किया, तो 7 के ऊपर की 16 आते हैं, उसकी वैल्यू 112 आती है, तो हर एक हमने एक एक निषेक पहले हमने उसमें डालते थे, अब क्या करना है, यानी उसको एक को खुला करके हम डालते थे, अभी 7 में से निकाल करे के और निषेक बढ़ा देना है, निषेक यानी वहां का एक 112 की संख्या बढ़ा देनी है, तो इसलिए उसमें जोड़ देना, यानी 711/64 प्लस 711/448 देने पर 711/56 यव मध्य के अगले निषेक यानी सेकंड निषेक 112 के लाने के लिए भागहार होता है। उन्होंने करके नहीं दिखाया है, परंतु हमने देखा था ना 711/64 में 711/7×64, इसलिए समच्छेद करके ये सब हो जाता है। यह उक्त कथन का तात्पर्य है, एक कम दो गुणहानि आयाम 7 है और यव मध्य भागहार 711/64 है। अब यहाँ उन्होंने किया 711/64 को 7 से भाग दिया तो 711/448 आ गए, 711/64 प्लस ये वृद्धि का प्रमाण 711/448 = ये उन्होंने सॉल्व करके फिर लिखाया, क्योंकि समच्छेद करना तो ऊपर नीचे 7-7 से गुणा करना पड़ेगा, इसलिए वो 5688 आता है ऊपर और नीचे 448, फिर उसको ऊपर नीचे भाग दे दो तो 711/56 आ जाते हैं, यानी मुझे वो गुण कैसा ही रखने से आसान होता है, इतनी कैलकुलेशन करने की अपने को जरूरत नहीं है, इसलिए मैंने वो 7 गुणा या 64 में वो ऐसा ही रख के आपको समझाया। आगे ये 112 वो दूसरा निषेक था, तृतीय निषेक की वैल्यू कितनी है, 112 में से और 16 कम करने पड़ेंगे, या ओरिजिनल 128 में से 32 कम करना पड़ेगा, है ना। हाँ तो आगे तृतीय निषेक के भागहार को लाते समय एक कम गुणहानि से यव मध्य के भागहार को अपवर्तित कर लब्ध को उसी में मिला देने पर तृतीय निषेक का भागहार होता है। अभी क्या कहना चाहते हैं, अब तीसरे निषेक के लिए जैसे हमने नीचे भी देखा था, हमने आधी गुणहानि को ही वहां विरलन किया था, ऊपर का विरलन वही है, कौन सा 128 वो 711/64 वाला, और हरेक के ऊपर 128 रखे थे। अभी पहले निषेक के लिए 16 उसमें से निकाले, अब 16+16 32 निकालने पड़ेंगे। अभी वहां नीचे 8 बार विरलन नहीं करना, उसके आधे बार यानी 4 को ही विरलन करो, और 128 ये 32 हरेक के ऊपर 32 आ जाएंगे। अब मुझे बताना कितनी बार 32 निकलेंगे तो यहाँ एक निषेक मिलेगा। ब्रह्मा हमने एक में से 32 निकाले, दूसरे में से 32 निकाले, तीसरे में से डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, हमको निकाल कर एक नया निषेक बनाना है। नया निषेक की वैल्यू कितनी है? 96। तो 32 को कितने बार निकालो? तीन बार। तीन तीन 32 निकले तो एक 96 मिल जाए। अभी 112 में से अभी 16 कम करके 96 मिलने वाले। तीसरा निषेक 96 का है, तो हमने तीन 128 में से 32 निकाले तो हमको
एक मिल गया।
देखो इसमें से 32 माइनस हुए, नीचे लिखते हैं, तो यहाँ 96 रह गए। इसमें से 32 माइनस हुए, यहाँ 96 हो गए। इसमें से 32 माइनस हुए, यहाँ 96 हो गए। परंतु ये हमको 32 तीन मिले ना, तो उसमें क्या, इसमें एक ऐड किया हमने, एक निषेक यहाँ एक्स्ट्रा बना दिया 96 का। अभी चार स्थान, ये तीन स्थान गए तो एक की वृद्धि हो गई। तीन स्थान में से हमने 32 निकाले तो एक की वृद्धि हुई, तो हमारे पास 11 पूर्णांक कुछ स्थान है ना, तो कितने की वृद्धि हो जाएगी ये हमको निकालना है। देखो यहाँ देखते हैं, अभी यहाँ तो हमने पूरे 8 बार नहीं विरलन किया था, गुणहानि बार ही विरलन किया था, यानी 4 बार ही विरलन किया था, 4 का ही विरलन किया था, तो उसमें से 3 निकाले, यानी एक कम गुणहानि बार हमने निकाले। तो यही कह रहे हैं, तृतीय निषेक का भागहार लाते समय एक कम गुणहानि यानी 3 से यवमध्य के भागहार को अपवर्तित कर, यानी अभी हमारा इक्वेशन कैसा होगा, जिसको हम त्रैराशिक कहते हैं, इक्वेशन नहीं, त्रैराशिक। हाँ, तीन स्थानों में से जब हमने 32 निकाले तो हमें एक स्थान की वृद्धि मिली, तो 711/64 में से कितनी वृद्धि मिलेगी? तो डायरेक्ट उसका तीसरा भाग हो जाता है ना, तो उसमें इंटू 3 हो जाएगा यहाँ पर, और ओरिजिनल में उसका 1/3 मिलाना है। और ये ओरिजिनल यहाँ लिखना था, अपन हम आगे लिखेंगे 711/64, एक बार 64 है तो छेद को सम कर दो, तो यहाँ 3 से गुणा करो दो, तो ऊपर भी 3 से गुणा कर दो, तो 3 711 और 1 711 4 711 ब्रह्म 1 711 था बटे 64 था, और यहाँ 711/64 इंटू 3 था, दोनों को छेद समान करना है तभी हम एडिशन कर सकते हैं ऊपर के। अंशों की एडिशन तभी होती है जब छेद समान हो जावे, इसलिए छेद समान करने के लिए नीचे और ऊपर दोनों जगह 3-3 से गुणा किया, तो 64। अभी हमारे नीचे का छेद को छोड़ दो, छेद वैसा ही रखना, ऊपर एक बार 711, यहाँ 3 बार 711, तो टोटल 4 बार 711 आ जाएंगे, तो 4 बार 711 आ जाएंगे, यानी हमारी टोटल मिल गई हमको। हाँ, तो ये 4 से यहाँ 16 हो जाएंगे, सूत्र करते 48 हो जाएंगे, 711/48। ये कैलकुलेशन कम करने के लिए मैं ये 7 और 3 ऐसे रख रही हूँ। समझ में आई ये बात? ये तृतीय निषेक का भागहार है। देखो उन्होंने यहाँ लिखा है, उदाहरण लिखा है ना, एक कम गुणहानि आयाम 3 है, ये वो मध्य भागहार 711/64 है, तो 711/64 को 3 से भाग दिया, क्योंकि यहाँ का इक्वेशन क्या है, 3 स्थान जाने पर एक की वृद्धि होती है, है ना? तो उन्होंने वो सॉल्व करके लिया, 711/192 हो गए, तो 711/64 में 711/192 करें, मिला दिए उन्होंने, तो उसको समच्छेद करने पर उसका उत्तर आया 2844/192, और उसको सॉल्व करेंगे तो 711/48 आता है, तृतीय निषेक का भागहार। अब चौथा निषेक का क्या होगा? हाँ, 40 हो जाएगा, क्योंकि 6 × 8 होना है ना, तो आगे का 5 × 8 हो जाएगा, उन्होंने निकाला नहीं है,
बताया लिया अच्छा
क्यों अच्छा है आप बोलो अभी अभी मुझे यहाँ का त्रैराशिक बता लो।
यहाँ पे त्रैराशिक क्या हो जाएगी?
देखो ये यवो मध्य था 128, दूसरा निषेक था 112, तीसरा निषेक था 96, चौथा निषेक
कम कर दो,
कितना कम करो
80
हो जाएगा। तो 80 में क्या करना, अभी कितने उसमें प्रक्षेप, एक प्रक्षेप, दो प्रक्षेप, तीन प्रक्षेप, यानी उसमें 128 में से मां तो 48 कम करना है,
48
कम करना है। तो इस तरह से हिसाब से अभी 48 कम करना है, तो प्रत्येक 128 में से 48 निकालो, 128 में से 48 निकाले तो कितने 80 रहेंगे, तो कितने स्थान जाकर कितने की वृद्धि हो जाएगी, ऐसा हिसाब करना है आपको,
करना पड़ेगा।
करो ना करो
यहाँ पे जो 711 बस 64 है उसमें प्लस 711।
देखो हमने क्या किया था, वो विरलन करके उसके ऊपर 32-32 दिए थे,
711 बटे 64 प्लस 711 बटे 400,
उसका हमको इक्वेशन बताओ कितने स्थान जाने में कितने की वृद्धि हो जाएगी।
अस्सी की वृद्धि हम लोग को कितने स्थान जाने पर मिल जाएगी?
हाँ यानी 80 का स्थान कितने 32 मिलाने पर 80 मिल जाएंगे,
क्यों पूर्णा कुछ हो जाएगा?
देखो दो दो बार
जाने पर 80 की वृद्धि हो जाएगी, 32 निकाला 32 64 हो गए।
देखो ये आधा भी अगर निकालते हैं ना उसमें से, दो में भी अगर हम 64 डालते हैं, ऐसा ऐसा करते हैं, हम ज्यादा लंबाते नहीं, दो का विलयन कर हमने 64 दिए, तो एक बार 64 निकाले तो कितने रह गए,
एक बार 64 निकाले तो
128 इसमें से 64 निकाले,
नहीं नहीं 128 में से निकालना है, तो सब 64 रह गए ना, 128 में से 64 निकाले तो 64 बाकी रह गए,
64 रह गए, परंतु हमको वहाँ 64
हम लोग को वो
अपन ये 64 मिलाते जाना, तो हमको
64 तो वो एक पूर्णांक भी नहीं होगा, तो एक पूर्णांक कुछ हो जाएगा,
कुछ तो होना ही है ना। क्योंकि हर एक में से देखो यहाँ 16 16 16 48 निकालते गए हम, 48 निकालते गए तो 80 रह गए, तो 48 निकाले एक बार, देखो हिसाब करो, एक बार 48 निकाले, दूसरी बार 48 निकाले, तो 16 एक्स्ट्रा रह गए और एक निषेक मिल गया, ये 16 छूटे रह गए, दो में से 48 निकाले तो तीसरा एक निषेक तैयार हुआ और एक्स्ट्रा 16 रहे, फिर और दो में से 48 यहाँ दो पूरे हो गए, उसमें से तीन बने और दो में से और एक बना, तो उसके भी 16 रह गए, और दो मिले उसके भी 16 रहे, तो ऐसे 16 5 80
तीन में से हम लोग को
ऊपर 11 है ना, ऊपर तो 11 है, तो पांच बार तो हम 10 बार तो निकाल सकते हैं 480 10 बार 48 निकाले ना
हम लोग को, तो तीन में से निकालेंगे ना, तो हम लोग को पूरा 2 2 4 2 6 और 7 निषेक मिल जाएंगे।
देखो फिर से दो में से इतने निकाले हमने, हाँ। तो एक पूरा निषेक मिला, 16 बचे, दूसरे एक और मिला, 16 बाकी रहे, ऐसे पांच बार करो ना तो और एक मिलेगा,
पांच बार 16 बाकी रहते तो
16 5 80 हो जाएगी ना,
16 85
यानी पांच पूरे निषेक मिलेंगे और फिर और पांच और एक 6 मिलेंगे, 10 स्थान जाने पर 6 की वृद्धि हो जाएगी, फिर से 10 स्थान में से हमने 48 निकाले, रिमेनिंग तो 80 रह ही गए, और
पांच स्थान जाने पर 1 की वृद्धि होती है, तो 11 बट्टे
पांच स्थान जाने पर एक की वृद्धि कैसे?
16 बच्चे थे,
दो स्थान जाने पर एक वृद्धि प्लस 16।
हाँ, दो स्थान जाने पर एक वृद्धि प्लस 16,
तो टोटल 10 स्थान जाने पर पांच
नहीं 10 वृद्धि प्लस एक।
10 कैसी होती है? दो में एक वृद्धि होती है।
हाँ, तो पांच वृद्धि प्लस छह वृद्धि हो जाएगी।
हाँ, छह, वही तो मैंने निकाला, छह वृद्धि हुई। 10 स्थान जाने पर 6 की वृद्धि हुई। देखो, 10 स्थान जाने पर 6 की वृद्धि हुई है ना। नहीं नहीं, चाहिए नहीं, कितनी होती है वो निकालना है। तो 711 बटे 64 में कितने की वृद्धि होगी? तो इंटू 6 दशांश हो जाएंगे ना। 6 दशांश यानी 3/5 हो गए यहाँ पर। 10 स्थान जाने पर जरा मैं निकाल रही हूँ। नहीं लिखो मत, क्योंकि अपना कैलकुलेशन चल रहा है। यहाँ कहाँ की बात चल रही है? मैं चतुर्थ की बात चल रही है ना।
चतुर्थ की बात हाँ, चल रही है।
10 स्थान जाने पर इतनी होती है। अभी ये ओरिजिनल में मिलाना पड़ेगा, प्लस 711 बटे 64
मिलाना पड़ेगा।
हाँ, उसमें मिला दो। अभी इसमें नीचे 5 गुना करो, ऊपर भी 5 गुना करो। तो ये 5 गुना है और ये 3 है, ये 5 3 8 हो गए।
711 बटे
और नीचे इंटू 5 है ना, 5 और 3 8 हो गए ऊपर। 711 इंटू
8 5 3 8 8
और नीचे 64 इंटू 5
64 इंटू 5 अभी
और 8 8 8 8 64 8 5 40। अभी अभी फिर से नहीं, मैं कहती हूँ, पहले मुझे निकालना था, इसलिए मैं जरा फास्ट गई, क्योंकि मैं स्लो जाती हूँ तो मुझे फिर सोचना नहीं आता। अभी मैं स्लोली समझाती हूँ। देखो, ऊपर का विरलन किया, वो 11 पूर्णांक कुछ थे हैं, तो हर एक के ऊपर 128 था। हर 128 में से हमने ये हमारा चौथा निषेक है, तो 3 प्रक्षेप हमारे कम हो गए। 16 16 और 16 48 कम हुए हैं, पहले निषेक की अपेक्षा, 128 की अपेक्षा। 128 में से हमने 48 हर एक में से निकाले, तो पहले में से 48 निकाले, दूसरे में से 48 निकाले। अब यहाँ रिमेनिंग कितने? 80 रहे, तो यहाँ 48 के बदले 80 रह जाएंगे, 128 के बदले 80 रहेंगे और 48 निकाले। दो स्थानों में से चर्चा कर रहे, अब दोनों स्थान दोनों को मिला दो, 48 और 48। हाँ, यानी वो 40 और 40 और 8 8 एक्स्ट्रा रहेगी। यानी 48 प्लस 48 96 रह गए। 80 तो यहाँ रह गए, 128 में से 48 निकाल लिए, 80 रह गए। ये एक निषेक, दूसरे 128 में से 48 निकाले, 80 रह गए। अब ये 48 और 48 जो दो में से निकाले हैं, उसमें एक और 80 मिलेगा, 96 है ना। ये निकाले हुए में से निषेक नया बना है ना। नीचे का नहीं करो, जरूरत भी नहीं है इसे करे नहीं करे। हाँ, डायरेक्ट ही निकालना, डायरेक्ट निकालने में आसानी है, इसलिए मैं कह रही हूँ। 48 निकले, 48 निकले, उसमें से 96 हुए, तो 80 प्लस 16, यानी ये एक निषेक हुआ, एक दूसरा निषेक हुआ, तीसरा निषेक हुआ, यहाँ 16 बचे हैं। अभी ऐसा ऐसे रखो, ये दो निषेकों में से क्या बने, यानी दो 128 में से क्या बने? 3 पूरे निषेक बने, 2 में से 3 बने और 16 खुला रच गए। आगे के 2 में से ऐसे 3 बनेंगे और 16 और खुला रहेंगे। ऐसे 5 बार करो, तो 5 बार में क्या हो जाएगा, यानी पहले 2, दूसरे 2, तीसरे 2, चौथे 2, इस तरह से निकाले हमने, तो वृद्धि का प्रमाण कितना है? 5 बार 80-80 मिले और 5 बार 16-16 मिले, तो 5 बार 16 मिले तो और एक निषेक तैयार हुआ, छठा हुआ। यानी ओरिजिनल जो थे, कितने बार 11 पूर्णांक कुछ थे, उतने तो 80 रह गए और एक्स्ट्रा कितने बने? तो 10 में से हमने 5 तो में निकाले और 6-6 जो रह गए थे 5 बार के 6, तो उसको मिलाकर एक और मिला, यानी 5 प्लस 1 हमको एक्स्ट्रा मिले। 6 मिले, यहाँ तक ख्याल में आई ना? और आगे वाला जो वो उसका हम कैलकुलेट करके निकाल रहे हैं, यानी हमारे क्या है 10 स्थान हमने गिने, तो 10 में से हमको ओरिजिनल तो 10 तो थे ही, तो ओरिजिनल तो 10 है, एक्स्ट्रा कितने हो गए, तो 6 एक्स्ट्रा मिले। हाँ, 10 स्थानों में 6 एक्स्ट्रा मिले,
क्योंकि 5 स्थान में 5 प्लस 1 मिलता है।
हर एक स्थान, हर दो स्थान में से एक पूरा
16 मिलता है,
और 1/5,
तो 10 पे कितने,
दो स्थानों में एक पूरा और 1/5, 16 यानी 1/5,
तो 10
दो स्थानों में कितना मिला, एक प्लस
दो, दो, अरे एक पूरा मिल गया, और
एक पूर्णांक एक पंचमांश एक्स्ट्रा हुआ, हर दो स्थानों में दो पूर्णांक एक पंचमांश एक्स्ट्रा हुआ। समझ में आती है बात?
तो ये सीधा 711 बात से 64 पे ये कैलकुलेट कर दो,
711 बटे 64 में कितना, देखो यानी हर दो स्थान में दो तो थे ओरिजिनल, वो तो 80-80 वाले रहे, और उसमें हमने 48-48 निकाले, तो एक और एक पूरा मिला, और 16 का अर्थ 1/5 मिला, तो एक पूर्णांक एक पंचमांश एक्स्ट्रा हो गया वृद्धि। हर दो स्थान में, यानी दो स्थान में, हर दो लिखने की जरूरत नहीं, दो स्थान में जाके एक की एक पूरा मिलता है और एक पंचमांश मिलता है, पांच रुपए। तो हमारे टोटल स्थान कितने हैं, वो
711 बटे 64।
हाँ, तो 711 बटे 64 स्थानों में कितनी वृद्धि हो जाएगी, तो 711 बटे 64
इंटू 6/5,
हाँ,
डिवाइडेड बाय 2,
6/5
डिवाइडेड बाय 2,
हाँ, इंटू 1/2 डिवाइडेड बाय 2, बराबर है। हमने देखा ना, हमने दूसरा इक्वेशन बनाया कि हर 10 स्थान में 6 की वृद्धि, उसके बदले अभी हमने हर दो स्थान में एक पूर्णांक एक पंचमांश की वृद्धि, क्योंकि दो स्थान में से 48-48 निकाले, तो हाँ वही तो है, वो तो इस ये इक्वेशन ज़रा अच्छा है ना, क्योंकि 10 कैसे निकाले क्या कहे, दो स्थानों में से हमने 48-48 निकाले, तो हमारे 80 का एक निषेक पूरा मिल गया, और 16 रहे, तो 16 क्या है, 80 का पांचवा भाग है। देखो कहाँ गया मेरा डस्टर, किधर है, हाँ, दो चार रखने चाहिए, और पार्टी को ही बांध के रखने चाहिए। देखो हर दो स्थान में कितने की एक एक्स पूरा मिला, और 16 यानी 1/5 मिला, 80 का 1/5 मिला, तो एक पूर्णांक एक पंचमांश का अर्थ है, इसको सॉल्व करो, 5 एक 5 और एक 6/5, तो दो स्थान जाने पर 6/5 की वृद्धि का प्रमाण है ये। यहाँ तक समझ में आई बात? तो हमारे टोटल स्थान 711/64 है, उसमें कितनी हो जाएगी, स्लोली जाते हैं, आपको लिखना है ना, यानी हर दो स्थान में 6/5 की वृद्धि, तो टोटल 711/64 में कितने की वृद्धि, तो अभी हम इक्वेशन कैसे करते, 711/64 यहाँ को गुणा करेंगे, इंटू 6/5 गुणा, ये दो नीचे चले जाएंगे, भागार में चले जाएंगे, एक द्वितीयांश।
कुछ गड़बड़ हुआ है,
हाँ?
ये कैलकुलेशन काफी सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा,
सिग्निफाई कर, सिंप्लीफाई करना, तीन पंचमांश करो ना इसको, व्यतिरिक्त हो गए ना,
हाँ।
तो तीन पंचमांश यहाँ तक, तो ये वृद्धि का प्रमाण है, ये वृद्धि ओरिजिनल में डालनी पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी,
हाँ, सॉरी मैं नहीं डालता प्लस,
हाँ, तो अभी ये हो गया, तो प्लस क्या करेंगे, 711/64, अब यहाँ केवल 64 है, और यहाँ इंटू 5 है छेद में, तो यहाँ पांच से नीचे और ऊपर दोनों को गुणा करो, यानी ऊपर 711 पांच बार आ गए, छेद तो अभी दोनों का समान हो गया, और यहाँ 3711 है, यहाँ 5711 है, तो 8711 हो गए कि नहीं, और नीचे वही छेद रह गया, तो ये तो हमने दोनों का सॉल्व करके यहाँ लिख दिया। उत्तर क्या आया? 711 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 64 इंटू 5। अभी 8 का भाग दे दो 64 को, 8 के 8, 8 8 64, 8 पंचे 40। ये तो मुझे अभी ख्याल आया, मुझे तो लास्ट टाइम हमने ये सॉल्व नहीं किया था, मैंने ऐसे 6 गुना 8 और 5 गुना 8 करके बताया था आपको, मैंने भी सॉल्व नहीं किया था। हाँ उन्होंने लिखा नहीं है यहाँ पर, हाँ 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 लिखो लिखो, ये चतुर्थ गुणहानि का, हाँ गुणहानि नहीं, चतुर्थ निषेक का, अंतिम निषेक का भाग हर आया है। कौन था 48? देखो हाँ 128 थे हमको, अभी पहले हम ऐड करते थे ना उसमें, ऐड 16 में ऐड किए 24 हुए वगैरह, अभी हमको माइनस करना है, अभी 128 हमारी ओरिजिनल वैल्यू है, ऊपर के विरलन में प्रत्येक एक के प्रति 128 था, वहाँ 80 रखना है, बाकी रखना है, तो उन्होंने प्रक्षेप कितने कम कर दिए, 128 में एक प्रक्षेप वहाँ 16 का है, पहली गुणहानि का प्रक्षेप ऊपर के 16 है, 16 को एक बार कम किया 112 आ गए, 16 दो बार 16 कम कर दिए, 32 कम कर दिए तो कितने आ गए, हाँ 96, तीन बार 16 कम कर दिए तो कितने आ गए 80, ये तीसरा निषेक का प्रमाण है। तीसरा नहीं, चौथा निषेक, पहला निषेक तो 128 का है, दूसरा निषेक 112 का है, उसमें एक बार कम कर दिया, तीसरा निषेक 96 का है, दो बार प्रक्षेप कम कर दिए, और चौथा निषेक 80 का है, तीन बार प्रक्षेप कम कर दिए, यानी 16 16 16 48 हो गए, तो हमके तीन प्रक्षेप कम करना है तो हमें चौथा निषेक आएगा, बराबर है, तो हमने हर 128 में से 48 निकाल लिए, दूसरे 128 में से भी 48 निकाल लिए, तो अभी हमारे पास 96 हो गए, 96 में से 80 हमने एक निषेक बनाया, 16 खुले रह गए, तो दो में से क्या मिला गया, एक एक्स्ट्रा, और 16 ने 1/5 एक्स्ट्रा मिल गया, ये हमने नीचे हमने विरलन किया ही नहीं, डायरेक्ट हमने हिसाब कर दिया है ना, तो हर दो स्थान में 6/5 एक्स्ट्रा निवृद्धि, तो 711/64 में कितने की वृद्धि हुई, तो ये हमने सॉल्व किया, वो हमको ओरिजिनल में मिलाना है, तो ये तीन बार 711 में, हाँ नीचे 64 × 5 आते हैं, उसी में ओरिजिनल वैल्यू मिलाना 711/64, तो छेद समान करने के लिए 64 को भी 5 से गुणा किया, तो ऊपर भी 5 से गुणा करना पड़ेगा, हाँ तो 8 बार 711 आ गए, ये मैं आगे सब पूरे उसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम 8 का भाग देते हैं 64 को, नीचे 64 × 5 है, तो 8 का भाग 64 को दे दो, 8 के 8 8 8 64, तो नीचे 40 रह गया, ऊपर 711 रह गया। यहाँ तक ख्याल में है? हाँ अभी आ गए, कल 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 कल, इतना समझ कर आगे जा रहे बरोबर अच्छा है, क्योंकि जल्दी जाने से कुछ नहीं समझेगा, तो थोड़ा समझ समझते जा रहे, भले इस टाइम लग जाए कोई बात नहीं। जवानी के ज्ञान ते सूझे लो कालो सोवाणी मस्तकनम सदा देत हो
प्रमोरियंताणं नमोस्तुते।